मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मुझे किसी विषय को ही लेना पड़ेगा और बेहतर होगा कि हम G7 का जो अभी सम्मेलन संपन्न हुआ है उस पर मुख्य विषय के तहत कुछ बातें करें। हालांकि मैं चाह रहा था कि जो मैंने कल शुरुआत की थी कि आप सबको अपने दिमाग को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसे उपजाऊ बनाना चाहिए, उस पर मैं बातें करूं, लेकिन आज मेरे पास जो खबरें हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। कोई बात नहीं, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्योंकि उस पर बात करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रेडियो न्यूज़ सुनी हो तो उसमें एक छोटी सी खबर थी, छोटी सी ही थी, कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन अभी लिस्बन में हुआ है और उसमें भारत ने अपनी बात रखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है, लेकिन चूंकि अब प्री एग्जामिनेशन भी थोड़े से अमहत्वपूर्ण बातों को महत्वपूर्ण बनाने में लग गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जानकारी आपको दी ही जानी चाहिए कि ये जो सम्मेलन है यह लिस्बन में हुआ था। चूंकि महासागर से जुड़ा हुआ है और अभी महासागर की सुरक्षा को लेकर के, महासागर के पर्यावरण की रक्षा को लेकर के काफ़ी बातें की जा रही हैं, इसीलिए इस सम्मेलन का थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। और महासागर की संरक्षण के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में भारत के सिद्धांत क्या हैं, इसको लेकर के बाकायदे ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार किया गया है। हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उसे वो समय आने पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उसके सामने किस तरह का संकट आ गया है उसे आप देख रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने इससे पहले जानबूझकर नहीं की थी क्योंकि घटनाएं लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और सच पूछे तो जहां भी इस तरह की सरकारें बनी हैं कि दूसरे दलों के समर्थन से, वहां अक्सर देर सवेर इस तरह के संकट पैदा हो ही जाते हैं। तो ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, केवल स्थानों के नाम भर बदल जाते हैं, घटनाएं लगभग उसी क्रम से घटित होती रहती हैं और ये जो मामला है अब सीधे सीधे कोर्ट में पहुंच चुका है। हम उस पर नहीं जाते हैं, देखते हैं कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है और तब हम लोग हो सका तो इस पर कुछ संवैधानिक दृष्टि से बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं आपको दैनिक भास्कर में विराग गुप्ता जी का एक आर्टिकल छपा है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। विराग गुप्ता बहुत अच्छा लिखते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं और बहुत ही तथ्यपूर्ण तरीके से बात करते हैं, इधर उधर की चीजें नहीं लिखते हैं। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसमें आपको कुछ बहुत अच्छे तथ्य मिलेंगे और आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट भी कर लें। जो उन्होंने तीन चार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं जो नोट करने लायक हैं, देखिए एक तो यही है कि इसमें उन्होंने समाजशास्त्री जो हमारे रहे प्रोफेसर आंद्रे बेते, उनको एक कोट किया है और उसमें लिखा है कि उन्होंने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता, इसको लेकर के पिछले साल मेंस में एक क्वेश्चन भी आया है, संवैधानिक नैतिकता है ना, एथिक्स का टॉपिक है। क्योंकि अभी जो संकट पैदा हो रहे हैं वो संवैधानिक नैतिकता के अभाव में ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि दल बदले जा रहे हैं, वो देखते हैं कि कानून के दायरे में वो कहां तक सुरक्षित है, नैतिकता की उन्हें कोई चिंता नहीं होती, जनता की कोई चिंता नहीं होती कि अपने वोटर्स को आगे जाकर के वो क्या जवाब देंगे। जो चिंता हो रही है वो सिर्फ ये है कि किस तरीके से उन्हें सत्ता मिल जाए। इसके बाद फिर उन्होंने दो सेकेंड जो पॉइंट उठाया है कि इस तरह के जब संकट आते हैं तो चार संस्थानों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कलेज खड़ी होती है। एक है राज्यपाल कि वो क्या निर्णय ले, दूसरा है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं विधानसभा के, वो क्या करें क्या नहीं करें। अभी आप देख रहे हैं ना, मामला जो है डिप्टी स्पीकर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर चुनाव आयोग, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करने का जो अधिकार है, दायित्व है, वो चुनाव आयोग को है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे, जहां इस तरह के केसेस फिर दायर किए जाते हैं, याचिकाएं दायर हो जाती हैं। इन चारों के सामने संकट पैदा हो जाता है और खासकर आप देखते हैं कि स्पीकर, पता लगा कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने दल बदल किया है, उनको अयोग्य घोषित कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट अलग बात कह रहा है, हाई कोर्ट अलग बात कह रहा है, इस तरह के संकट लगातार आपको सुनने को मिलते होंगे। इसके बाद एक उन्होंने डेटा दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो रजिस्टर्ड दलों की संख्या 2001 में 694 थी, 694 थी, वो 20 सालों में बढ़कर के 2796 हो गई है। और इसमें से आपने कुछ दिनों पहले ही खबर पढ़ी होगी कि बहुत से की मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं, ये भी एक अच्छा डेटा है, इसे आप नोट कर लें। फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से खासकर ये जो दल, राजनीतिक दल इतनी तेजी के साथ जो बनते हैं वो दुनिया भर के दूसरे आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, हवाला कांड हुआ, चुनावी हेर फेर हुआ, दूसरे तरह के आपराधिक कार्य हुए उनमें लिप्त पाए जाते हैं। अब आप देखिए कि एक आपको नया सा फैक्ट शायद लगा हो। इसके बाद फिर उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि जो चुनाव आयोग हमारा है, चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है। देखिए, राजनीतिक दल अपना पंजीकरण कहां कराते हैं? चुनाव आयोग के पास। उन्हें चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग। लेकिन जब इन दलों पर किसी तरह की कार्रवाई की बात आती है तो उसके लिए चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कई बार सरकार से कहा भी है, लेकिन उस पर कानून नहीं बन रहा है। और इसीलिए खासकर जो डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के मामलों को लेकर के जो लगातार सवाल उठते रहे हैं, बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि भाई एक ट्रिब्यूनल बना लिया जाए और उस ट्रिब्यूनल में जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं उन्हें रखा जाए, तो एक ट्रिब्यूनल हो और ट्रिब्यूनल फिर इस पर अपने फैसले ले। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसको लेकर के जो कुछ संकट हैं, जो पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको अपनी बात को एनालिटिकल तरीके से रखने के लिए, इसके तहत मौजूद है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, प्लीज आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। एक मैं आप लोगों को बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट है SEZ को लेकर के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर के। हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है लगभग फेल हो चुका है। चीन ने इसी के आधार पर एक तरह से आर्थिक महाशक्ति बनने का अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसमें दिया हुआ है सरकार अब इसको फिर से बेहतर बनाने के लिए, अभी जो हमारा सत्र होगा संसद का, उसमें कानून लाने के बारे में सोच रही है। तो ये इस टॉपिक पर SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इस टॉपिक पर ये बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है। केवल इसी एडिटोरियल कमेंट के आधार पर आप एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत और बड़ा सॉलिड नोट तैयार कर सकते हैं, कोशिश करें। दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट है, खासकर अमेरिका में जो इतनी हिंसाएं आप देख रहे हैं कि वहां गोली चल गई, स्कूल में गोली चल गई, इसको लेकर के बकायदे वहां की जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं आप जानते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बकायदे हथियार नियंत्रण कानून पारित कर दिया है। और उसके अनुसार अब ये कर दिया गया है कि 21 वर्ष से कम युवा या संदिग्ध लोग अगर हथियार खरीदते हैं तो उन्हें बकायदे एक प्रारंभिक जांच से गुजरना पड़ेगा। इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है, मैं विशेष बात इस पर नहीं कहने जा रहा हूं, आप इसे पढ़ लेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक इसी तरह से दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है, अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है नेट जीरो का लक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंस को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे प्लीज आप उन्हें नोट कर ले। हालांकि आज मैं आपको ढेर सारे पॉइंट्स नोट करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आज दिन ही कुछ ऐसा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फसल है वो बम्पर आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन हो जाता है खबरों के। दोस्तों, अब मुख्य विषय के बारे में मैं थोड़ी सी बातों पर आऊंगा। मुख्य विषय के बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, G7 समिट समाप्त हो गया है, कहां हुआ आप जानते हैं, इसमें 7 देश इसके सदस्य हैं, उनके देशों के नाम भी आपको मालूम होंगे। जो फैसले लिए गए हैं 2-3, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वैश्विक फोरम पर, इंटरनेशनल जो भी फोरम है, उनमें जो बातचीत हो रही है वो लगभग आप पाएंगे कि इसी तरह के विषयों पर हो रही है। जैसे आप देखिए कि क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के, जो खासकर दुनिया के सामने जो जलवायु का संकट पैदा हो रहा है उसको लेकर के हर फोरम पर बात होती है, इस फोरम पर भी बात हुई। कोविड के कारण जो संकट खड़ा हो गया है दुनिया के सामने, आर्थिक संकट, खासकर सप्लाई चेन को लेकर के उस पर बात हुई, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। और जो लेटेस्ट प्रॉब्लम खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के चल रहा है, उस पर भी बातें हुई। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय मुझे लगता है और आपको मालूम भी होना चाहिए वो ये है कि $600 अरब के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये, जो जिसे कॉन्क्रीट आप कहेंगे, कि $600 अरब आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है, लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इसका उद्देश्य खासकर जो छोटे छोटे जो देश हैं, जो चीन से कर्ज लेने के कारण परेशान है, उनको किसी न किसी तरीके से उबारना है। और चीन पूरे इस क्षेत्र में जो अपना एक ढांचा तैयार कर रहा है यातायात का, ताकि वो दुनिया के बाजार तक पहुंच सके, उसके समानांतर एक व्यवस्था खड़ी करनी है। दोस्तों, आपने G7 के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया होगा। एक दो तथ्य जो अखबारों में आ रहे हैं, मैं उधर आपका विशेष रूप से ध्यान ले जाना चाहूंगा कि देखिए, जो G7 है, ये शुरुआत तो इसकी G6 के रूप में हुई थी, फिर कनाडा इसमें शामिल हो गया, G7, इसके बाद फिर रूस भी इसका सदस्य बना था। बाद में फिर 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो बकायदे यूक्रेन का ही हिस्सा था, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो उस समय फिर रूस को निकाल दिया गया। तो अब 8 में 7 देश बच गए हैं। एक बात आप कह सकते हैं कि भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है, चीन तो बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो चीन इसका सदस्य क्यों नहीं है। तो सीधी सी बात है कि इसका सदस्य बनने के लिए जो पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए वो न चीन की है न भारत की है। चीन भले ही इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो दुनिया की, लेकिन वहां की आबादी इतनी ज्यादा है कि प्रति व्यक्ति आय कम पड़ जाती है, और लगभग लगभग भारत की भी यही स्थिति है। तो दोस्तों, ये 1-2 पॉइंट्स थे जो खासकर प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे आपको बताने थे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी ऑफलाइन क्लासेज जो 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, उसके लिए झांसी के रीनू ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। रीनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। एक मेल मुझे मिला है सुजीत कुमार मकसूदपुर बिहार से। उन्होंने पंचायत सचिव के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सुजीत, इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और कुछ दोस्तों के नाम हैं, वंदना वर्मा लखनऊ से, वरुण शुक्ला, अनिशा वर्मा कोडरमा झारखंड से, सोनल वानखड़े पुणे से, और आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।